नमस्कार साथियों, झांसी मोबाइल वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मनीष और आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी झांसी को। साथियों, आपको जैसा आपको पता होगा कि मोबाइल वाणी पर आप समय समय पर जानकारी उपलब्ध हम कराते हैं और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम चूंकि रवि का मौसम आने वाला है, रवि की फसलें लगने वाली है, तो रवि के मौसम में कौन कौन सी फसलें हम लगानी चाहिए, कौन कौन से बीज जो अच्छे होते हैं, अच्छी प्रजाति के जो बीज रहते हैं उसको कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर ललित गंगवार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी आने वाले रबी की फसलों की तैयारी करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
तो ललित जी, हम अपने किसान साथियों की तरफ से एक सवाल जानना चाहेंगे, चूंकि अभी किसान साथियों ने अपनी खरीफ की फसल तैयार करके कटाई करके अपने घरों में रख ली है, कहीं कहीं कटाई भी चल रही है। अब बात आती है रबी की फसल, तो रबी की फसल में पूर्व से किस तरीके की हमारे किसान साथियों को तैयारी करनी चाहिए?
किसान भाइयों, रबी की तैयारी के लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास सिंचाई के क्या संसाधन उपलब्ध हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमको इस पर देनी चाहिए, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे कम लागत में कम पानी में अधिक पैदावार और अधिक मुनाफा कमा सकें। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि इस बार हमारे किसान भाइयों को अधिकांश जो लेनी चाहिए फसल लेनी चाहिए वो मसूर, सरसों और चने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गेहूं में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो गेहूं के लिए जिनके पास बहुत पानी 5-6 अवेलेबल है, उपलब्धता है, वही गेहूं की फसल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात आती है कि गेहूं में जितना आपको उत्पादन और उसका जो मूल्य मिलेगा उतना ही मूल्य आपको सरसों में मिल सकता है। जैसे गेहूं का जो औसत उत्पादन जो है वो लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास है, तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास है, उसमें हमको लगभग 40,000 रुपए की आमदनी प्राप्त होती है साल गेहूं की फसल में। इसी तरह अगर हम सरसों की अच्छी फसल अच्छी तरीके से करें तो हमको सरसों में भी इतना ही हमको धन प्राप्त हो सकता है, इतनी ही हमको हमारी आवक हो सकती है। तो इसके लिए हम ये ध्यान रखें कि सरसों भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम गेहूं से कमा सकते हैं, उतना हम सरसों से भी कमा सकते हैं। जबकि सरसों हमारे लिए जिस सरसों में हमको केवल 2 ही पानी देने होते हैं, जबकि गेहूं में हमको 5-6 पानी देने पड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, सरसों में दूसरी लागतें कम है, खाद का खर्च कम है, दवाई का खर्च कम है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हम सरसों की खेती के लिए किसानों को ये मौसम अभी एकदम उपयुक्त है, हमको अक्टूबर के महीने में सरसों की बुवाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और सरसों के लिए अच्छी प्रजातियां जो हैं वो हम सुझाव देते हैं, जैसे जिसमें सरसों की अच्छी प्रजातियों में RS-30 है, पूसा बोल्ड है, इन प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं। सरसों की तैयारी, खेत की तैयारी के लिए सरसों के लिए एकदम भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है, तो हमको 3-4 जुताइयां करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर लेना चाहिए। और पहला पानी सरसों की फसल में जो देना है वो हमको करीब 35-40 दिन के बाद देना है, जब सरसों में एक बार मुरझान आने लगे, ये उसका संकेत है। तो उसके बाद हमको एक पानी देना है, और अगर जरूरत लगे तो हमको दूसरा पानी देने की आवश्यकता है, और अगर जरूरत नहीं है तो दूसरा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही किसान भाइयों, खाद और उर्वरक में सरसों के लिए अगर हम चाहें तो DAP के स्थान पर हमको सुपर फास्फेट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सुपर फास्फेट में फास्फेट के साथ साथ में सल्फर भी होता है, तो सल्फर जो भी तेल वाली फसलें होती हैं, तिलहन फसलें होती हैं, उनमें सल्फर की फसलों को ज्यादा जरूरत होती है, तो हम एक उर्वरक से हम 2 काम कर सकते हैं। दूसरा, सुपर फास्फेट हमारे लिए सस्ता भी है। DAP जो 1300-1400 रुपए का एक बैग आता है, तो उसके स्थान पर हम सुपर फास्फेट जो है वो 300 रुपए का एक बैग आता है। अगर हम एक DAP की थैली की जगह 4 DAP के बैग, सुपर फास्फेट के बैग डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ हल्का 15 किलो यूरिया की जरूरत होती है सरसों में। और वैसे हमारा अनुरोध आप सभी से ये रहेगा कि आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसके अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। अब बात आती है गेहूं की फसल की, तो गेहूं में आप सभी जानते हैं कि गेहूं में 5-6 पानी की जरूरत होती है, तो गेहूं में भी हम DAP के स्थान पर अगर हम जो है सल्फर फास्फेट के लिए NPK यूज कर सकते हैं, डीएपी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फास्फेट देने के लिए अपना जिप्सम अगर उपलब्ध हो तो जिप्सम भी यूज कर सकते हैं, जिप्सम भी बहुत अच्छा काम करता है फास्फेट के लिए। और इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हमको देसी खादों का भी बराबर मात्रा में उपयोग करना है। अगर हम देसी खादों को छोड़ देंगे तो हमारी खेती जो है जैसे हमारे शरीर में खून नहीं रहता उसी की समान हो जाएगी। जिस तरीके से जो हम सलाइन की वजह से अगर हम ग्लूकोज अगर बाहर से लें तो वो स्थिति होती है कि हम ग्लूकोज बाहर से कब तक लेके जिंदा रह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको मिट्टी को जीवित रखना है तो हमको देसी खादों का भी बराबर मात्रा में हमेशा प्रयोग करना होगा। साथ ही किसान भाइयों फसल चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी आप ध्यान रखें। जिस खेत में आप इस बार सरसों ले रहे हैं उस खेत में इस बार सरसों ना लें, जिस खेत में इस बार आप गेहूं कर रहे हैं उसमें अगली बार गेहूं ना करें। तो फसल चक्र जब आप अपनाएंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपका खर्च जो है कीट नियंत्रण खरपतवार नियंत्रण में जो है वो भी खर्च कम आएगा।
सर यहाँ पर एक सवाल हम अपने किसान साथियों की ओर से पूछना चाहते हैं क्योंकि हम अक्सर देखा करते हैं कि हमारे किसान साथी अभी जैसे कि मूंगफली की उन्होंने बुवाई की थी अपने खेतों में, अब अगर दूसरी फसल चक्र की बात करें तो यहाँ पर सरसों का जिक्र होता है कि सरसों की खेती हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे किसान साथी चूंकि पुरानी पद्धति से अपनी खेती करते हैं तो उनका मानना है कि खेत दुसाई मान जाते हैं। दुसाई का मतलब होता है कि अगर हम एक खेती करते हो दूसरी खेती करने जा रहे हैं तो वो उसकी पैदावार में कमी होती है। आपका क्या कहना है कि इससे किसान साथी कहां तक किस तरीके से अपने पैदावार को बढ़ा सके और क्या उसके लिए क्या करना चाहिए?
देखिए ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम अगर मूंगफली की खेती जहां पर हमने की है वहां पे अगर हम दोबारा दूसरी कोई सरसों की या दूसरी कोई खेती करेंगे तो दुसाई मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खेती हम कर सकते हैं उसमें, लेकिन हमको पोषक प्रबंधन जो है वो बराबर मात्रा में जो मृदा परीक्षण के अनुसार हमको रिकमेंड किया गया है वो हमको देना होगा, उससे हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। साथ में जो कार्बनिक खादें हैं जैसे हमारी गोबर खाद हो गई, कचरे की खाद हो गई और वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये हमको हमेशा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो हम अगर कितना भी डीएपी यूरिया डाल लें हम फसल उत्पादन में कामयाब नहीं होंगे, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। और जहां पर भी हमने रबी में अगर हमने दलहन फसल ली है तो हमको दूसरी फसल जो है वो नान दलहन लेनी चाहिए, जो जैसे गेहूं चना जहां पर हमने चना लिया है तो वहां पे अगली वर्ष हमको गेहूं लेना चाहिए या सरसों लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जड़ें भिन्न प्रकार की होती हैं। तो जो दलहन फसलें होती हैं उसमें राइजोम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो उस स्थिति में अगर हम दूसरी फसल लेंगे तो हमको नाइट्रोजन कम देनी पड़ेगी, और अगर हम सेम वही फसल उसमें लेंगे तो हमको नाइट्रोजन तो नहीं देनी पड़ेगी लेकिन जो उसने नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया है वो हमारा व्यर्थ चला जाएगा, दूसरा उस फसल में रोग और कीट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको एक साल के अंतराल पे फसल को रिपीट करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे मसूर की, तो मसूर के लिए भैया किसान भाइयों यही सलाह है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा आप दलहन और तिलहन की खेती करें जहां जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। तो मसूर के लिए भी हम आपको कुछ प्रजातियां हैं, जैसे मसूर के लिए हम आरबीएल 11 है, आरबीएल 6 है, आरबीएल 31 है, इन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मटर की खेती कर सकते हैं, इस समय मटर के लिए आप जो प्रजातियां हैं उन्नत प्रजातियां हैं उसमें पीएसएम 3 है, एपी 3 है, जीएस 10 है, इन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं बुंदेलखंड के लिए। इसके अलावा फिर आपका चना है, चने के लिए आप जो उकटा रोधी प्रजातियां हैं जिसमें जेएस 12 है, जेएस 14 है, विशाल है, तो इन प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि जो भी फसल हम बोएं तो उसमें हम बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज उपचार करने से जो भी फफूंद जनित बीमारियां होती हैं वो हमारी फसलों में नहीं आती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बीज उपचार करके टीकाकरण कर दें तो उससे हमारी फसलों का बचाव होता रहेगा, जो भी फफूंद जनित बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है वो नहीं आएगा।
बहुत अच्छी बातचीत हमारे किसान साथियों ने सुनी और बहुत अच्छी हमारे ललित सर ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है। एक चीज और जानना चाहेंगे ललित जी कि हमारे किसान साथी, चूंकि अभी आपने कौन कौन सी बीज होते हैं, चाहे वो मटर हो, सरसों हो, चना हो, आपने सारी प्रजातियां हमारे किसान साथियों को बता दी। एक हमारे मन में एक भ्रम भी, हमारे किसान साथी पूछते भी हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाता है कि दो वैरायटी वो लोग बोते हैं, तो खाने वाली मटर रहती है जो चपटे दाने की रहती है, एक गोल मटर रहती है जिसे PK3 के नाम से उसको जाना जाता है, चूंकि वैज्ञानिक दूसरा नाम है लेकिन लोग PK3 के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या अंतर है और किस तरीके से उनको लगाना चाहिए सर?
देखिए, लगाने के लिए पद्धति ये है कि हमको जो फसलों का हम अभी बात कर रहे थे उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश करें कि हम लाइन सोइंग करें, लाइन में करें। दूसरा, अगर सीड ड्रिल उपलब्ध हो तो सीड ड्रिल से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीड ड्रिल के साथ में हम खाद और बीज एक साथ दे सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों में अगर हम 45 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन की अगर दूरी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हमको मिलेगा। और उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास सीड ड्रिल है उसमें से आगे के जो फार होते हैं अगर वो हम निकाल खोल देंगे तो पीछे वाले फार से हम बुआई अगर करते हैं तो हमको बहुत फायदा होगा। और उसके साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है, जो भी हमारे फास्फेट और पोटास के जो उर्वरक हैं वो हमको बुवाई के साथ ही पूरी मात्रा उनको ही देनी है, और जो नाइट्रोजन उर्वरक हैं उनको हम दोबारा से भी दे सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों फास्फेट और पोटेशियम जो ऐसे दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो अचल पोषक तत्व हैं, अगर वो हम आप ऊपर से देंगे या DAP या फास्फेट खाद ऊपर से देंगे तो उनका फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा, हमने जो खाद लगाई है वो हमारे किसी काम में नहीं आएगी, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर गेहूं में भी है तो हम गेहूं में भी हम सीड ड्रिल से बुवाई करें लाइन से, और कोशिश करें कि हम पूरब से पश्चिम में बुवाई करें। उससे ये फायदा होगा कि फसल गिरने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब हमारी पूरब से पश्चिम की हवाएं चलती हैं तो फसल के बीच से हवा पास हो जाती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीज उपचार की हमने बात की, तो वो जैसे मटर में जो सफेद रंग का हमारा पाउडरी मिल्ड्यू आता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम जो हमने प्रजातियां बताई वो प्रतिरोधक प्रजातियां हैं, फिर भी अगर हम प्रिवेंशन के तौर पे एक टीकाकरण के तौर पे बीजों के टीकाकरण के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बीज उपचार करना ना भूलें, ये हमारा मूल मंत्र है, बीज उपचार ना भूलें।
अभी साथियों आपने ललित गंगवार जी को सुना और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इस विषय को लेकर काफी उत्साहित होंगे और रबी की फसल की अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे बीजों का चयन करेंगे, बीज के पहले उपचार जरूर करेंगे। और साथ साथ में एक और विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि मिट्टी का परीक्षण आप लोग जरूर करवाएं। साथियों इसी के साथ समय होता है आज के हमारे इस कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तो सुनते रहिए झांसी मोबाइल वाणी, आपका अपना मोबाइल वाणी, झांसी मोबाइल वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।